में है तेरी याद बाबा जिगर में तेरा प्यार, दिल में है तेरी याद बाबा जिगर में तेरा प्यार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार,
दिल में है तेरी याद बाबा जिगर में तेरा प्यार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार।
ओम शांति। प्यारे बाबा के ज्ञान रत्नों की खान और अनुभवों की खान आज हमारे सन्मुख आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार राजेंद्र प्रसाद भाई हमारे बीच पधारे हैं। हम उनका एक हाथ की ताली से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भ्राता जी का परिचय विशाल है। भ्राता जी ने 1960 में उत्तर प्रदेश की धरणी पर कानपुर के पास प्यारे बाबा का ज्ञान प्राप्त किया। वहां से बाबा ने आपको इस खजाने का मालिक के रूप में रत्न चुना। आप 1972 में बाल्यकाल किशोर काल में ही ईश्वरीय सेवा विश्व सेवा में मधुबन में समर्पित हुए। आप 1976 से हम सब की आदरणीय दीदी मनमोहिनी जी के साथ मुरली हिंदी का कंपोज करना सीखे और उनके साथ रहकर आपने मुरली की कंपोजिंग सेवाएं शुरू की। दीदी के सानिध्य से ही आपने वरदान, स्लोगन और विशेष पॉइंट हम ब्राह्मणों के पुरुषार्थ को सरल सहज बनाने के लिए मुरली से चुनना निकालना शुरू किया। आप पांडव भवन, ज्ञान सरोवर और शांतिवन तीनों ही कॉम्प्लेक्स के फोटो स्टेट डिपार्टमेंट के निमित्त हेड हैं। आप आदरणीय दादी जानकी जी का पत्र पुष्प हर सेवा केंद्र पर जो जाता है उसका भी सुनियोजन आपके ही द्वारा होता है। आप विश्व सेवा में चहुं दिशाओं में आपने भ्रमण किया, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, नेपाल, फिजी, मॉरिशियस जैसे अनेक देशों में वैश्विक स्तर पर महासम्मेलनों को आपने संबोधित किया। राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के ग्राम विकास विंग के आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। ऐसे प्रखर, कुशल, महीन बुद्धि, दूरादेशी बुद्धि, दिव्य बुद्धि आदरणीय भ्राता जी को आज हम विनम्र निवेदन करते हैं कि दीदी की विशेषताओं को आपने नजदीक से महीनता से अनुभव में उतारा तो उनकी पढ़ाई और एक्यूरेसी की धारणाएं जो उनके जीवन में थी और आपने उनसे अपना जीवन इतना दिव्य, अलौकिक और बहुमुखी व्यक्तित्व का धनी बनाया उसके विषय में हमें प्रकाश प्रदान करें आदरणीय भ्राता जी।
ओम शांति। हमारे भरूच के भाई बहने मधुबन में आए हैं तो मधुबन में बाहर आ गई है ने? दीदी के स्मृति के दिन चल रहे हैं। जिन्होंने दीदी को देखा है हाथ उठाएंगे। ये बस बहने चार पांच बैठी हैं, एक दो है। तो 28 जुलाई 1983 दीदी जी का अचानक ही इस ड्रामा में जो हीरो पार्ट था वो लिपट गया। दीदी मनमोहिनी की कहानियां बहुत लंबी हैं। वो तो 11 साल मैं दीदी के अंग संग रहा हूं, 60 में आपको बताऊंगा। क्योंकि दीदी और दादी की जोड़ी बाबा ने कैसे चुनी दादी प्रकाश मणि को तो आपने कहीं उन्हें देखा ही है, लेकिन दीदी मनमोहिनी बहुत धनाढ्य परिवार की थी। उनके जो ससुर थे लौकिक में उनकी शादी हो गई थी, वो मुखिया थे सिंधी समाज के, और जब ये लोग घरों से निकले हैं तो बहुत जो पिकेटिंग हुई, हंगामे हुई, वो इनके परिवार के सदस्य उसमें सबसे आगे थे, क्योंकि दीदी यंग एज में निकली और दीदी के साथ उनकी छोटी बहन सील दादी जो गाम देवी सेंटर पर रहती थी, और इन दोनों की मम्मी क्वीन मदर, वो भी तीन की तीन ये निकले, और इनके साथ ही तीन बहनें और ऐसे ही दो बहनें और एक माँ चचेरी, एक ही घर से छह लोग निकल आए, तो पूरे सिंध में हंगामा हो गया, ये क्या कौन संस्था कौन दादा है जो ऐसे ऐसे जवान बहनों को भाइयों को माताओं को निकाल करके अपने संस्था में ऐड कर दिया। तो बहुत उस समय विरोध हुए, लेकिन दीदी को बाबा ने पहले से सेलेक्ट किया और एक युक्ति से उनको सिलाई स्कूल खोल के दिया बच्चों के लिए, क्यों जो संस्था में बच्चे आए थे, माताएं आई थी, उनकी पढ़ाई भी हो और उनकी पालना भी माताएं करें, तो सिलाई मशीन ला करके दी और स्कूल खोल करके दीदी को उसका हेड बनाया कराची में। विरोध तो पूरे हो गए, उसकी कहानी तो लंबी है, लेकिन दीदी की बहुत तीक्ष्ण बुद्धि थी, बहुत विशाल बुद्धि थी। लौकिक में उन्होंने स्कूल की पढ़ाई नहीं की थी, बाबा ने उनको पढ़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने ही नशे में रहती थी। एक रमणीक बात दीदी की मैं सुना के यहाँ शुरू करूंगा। बाबा ने एक टीचर को दीदी के लिए नियुक्त किया कि तुम इनको थोड़ा हिंदी पढ़ना सिखा दो, और दीदी पर्सनैलिटी अलग थी, तो जब उसने पढ़ाना शुरू किया तो दीदी पढ़ती नहीं थी, तो उसने बाबा को कंप्लेन किया कि बाबा ये कहना नहीं मानते, जो कहते हैं लिखो, ये लिखती नहीं है, पढ़ती नहीं है। तो बाबा ने बुलाया बड़े प्यार से, पूछा बच्ची तुम क्यों नहीं सीख रही हो, क्यों नहीं पढ़ती हो? तो दीदी कहती, ये जो बहन है ना, मुझे कहती है तुम धृतराष्ट्र लिखो। अब मैं अंधे का नाम क्यों लिखूं? क्योंकि वो दीदी को धृतराष्ट्र लिखना नहीं आता था, वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा अक्षर है ना। तो ऐसे ऐसे रमणीकता से बाबा भी हंसने लगे, कहने छोड़ दो इसको, ऐसे ही रहने दो। दीदी ने एक दिन भी हिंदी में साइन नहीं किया, मुख्य प्रशासिका बन गई, संस्था की हेड बनी, लेकिन कभी भी हिंदी में मैंने उनकी साइन नहीं देखी। सिंधी राइटिंग थोड़ी थी उनकी, वो सिंधी सीखी थी थोड़ी बहुत, वो सिंधी में ही साइन करते थे। लेकिन प्रशासन करने में, सबको हैंडलिंग करने में बहुत पावरफुल आत्मा थी, नियम मर्यादाएं, और बाबा से इतना दिल का प्यार। गोपिका, उसका नाम भी लौकिक में गोपी था, तो गोपी नाम था, गोपिका की तरह बाबा की प्यार में साकार, बाबा को बस यही सब कुछ है। तो उसी धुन में एक बाबा दूसरा न कोई, लगन में मगन रहती, और बाबा जो कहे, जैसे मम्मा बाबा के साथ राइट हैंड बन करके रही, ऐसे ही दादी प्रकाश मणि को मुन्नी मम्मा का नाम मिला, और उसके बाद दीदी थी जो मुख्य प्रशासिका के रूप में चुनी बाबा ने। जब मम्मा अव्यक्त हुई, आपको एक कहानी यहां सुना दूं कि आबू में लाने के निमित्त भी दीदी ही बनी, क्योंकि जब पार्टीशन के बाद 1950 में सभी लौकिक संबंधी भारत में जब आ गए थे पार्टीशन के बाद, तो दीदी के संबंधी यहाँ बहुत पैसे वाले और माने नामी ग्रामी थे, उनका जसलोक हॉस्पिटल बॉम्बे में उनके भाई का था, तो इन सब ने निमंत्रण दिया कि आप भारत में अभी आ जाओ, यहाँ सेवा करो। उनका लक्ष्य तो अलग था कि भारत में आएंगे तो बाबा ने जो इतना प्यार से इनको पालना वहां दी है, खिलाया पिलाया है, यहाँ आएंगे तो संस्था टूट जाएगी, इनको कौन मदद करेगा। तो इस तरह से निमंत्रण तो बड़े प्यार से दिया, लेकिन उनके बाद उनको सहयोग न दे करके संस्था को समाप्त हो जाए ऐसा प्रयास करने लगे। तो दीदी जब पहले पहले उनके निमंत्रण पर आई आबू, तो यहाँ पर एक बाबा के लौकिक गुरु थे गंगेश्वरानंद, जो लास्ट गुरु बाबा के थे, आंखें नहीं थी उनको, अंधे थे, लेकिन यही आबू में उनका आश्रम है। तो उन्होंने बाबा को कहला के भेजा कि आप माउंट आबू आ जाओ, ये ऋषि मुनियों की भूमि है, यहाँ देखो, यहाँ आकर के अपनी संस्था को लेके आओ। तो बाबा ने भी दीदी को कहा कि जाओ देख के आओ आबू में कैसा है। तो दीदी पूरा आबू घूम के आई, 400 लोगों के लिए इतना बड़ा स्थान मिले, तो लास्ट में जब जाने लगी तो अचानक कोई ने कहा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी कोठी है, आप इसको देखो। ब्रज कोठी भरतपुर राजा की कोठी थी, अभी भी है, वहाँ होटल चलता है। तो जब लास्ट में वो बंद थी, लेकिन कांच से झांक करके देखा तो पसंद आ गई कि यहाँ पर रह सकते हैं, बहुत बड़ा स्थान है। और जब राजा से वहाँ के बात किया तो उसने भी हाँ कर लिया। तो दीदी ने वो पहली बिल्डिंग देख करके बाबा को कहा, बाबा स्थान बहुत अच्छा है आबू का, हम समझते हैं भले यहाँ पर आए। तो दीदी ने ही फाइनल किया और सारी संस्था को बाबा ट्रांसफर करके कराची से ओखा बंदरगाह पर स्टीमर से आए और ओखा बंदरगाह से आबू तक ट्रेन में आए। तो आबू और ओखा तक आने के लिए जो भाड़ा था, किराया था, वो इतना अधिक था क्योंकि सब सामान लेकर के आए थे, तो उसके कारण सारा पैसा जो था बाबा का खत्म हो गया वहां। और यहाँ आए तो जिन्होंने निमंत्रण दिया था वो अभी खेल देखने लगे कि देखिए अब कैसे चलता है। और उसमें बाबा का भी कुछ राज था कि जब बच्चों के आगे पेपर आएगा तब ये सेवा के लिए निकलेंगे, ऐसे तो जाने वाले कोई है नहीं। तो बाबा ने भी बहुत युक्ति से वो परीक्षा 1-1.5 साल के ली, जो यज्ञ के अंदर फुल बेगरी पार्ट हो गया। और बेगरी पार्ट में दीदी को ही पहले निमित्त बनाया कि अब तुम जाओ, तुम्हारे पास जो बाबा ने ज्ञान रतन दिए हैं, बहनों को लेके जाओ और सेवाएं शुरू करो। तो पहले पहले ही कुछ बहनें, मनोहर दादी, गंगे दादी और दादियां जो थी वो गई और इलाहाबाद कुंभ मेले से सेवाएं शुरू की 51-52 में, और उसके बाद ही ये सेवाओं का विस्तार हुआ। दीदी ने ही पहला सेवा केंद्र दिल्ली कमला नगर का संभाला, क्यों बाबा उनको हर बात में आगे रखते थे। तो दीदी का प्रशासन, दीदी की हैंडलिंग पावर, दीदी की मर्यादाएं, नियमों में दृढ़ता इतनी थी जो उनकी स्थिति से ही सेवा होती थी। तो इसलिए दीदी ने दिल्ली में रह करके सेवाओं की शुरुआत की, सब दादियां जाती थी। लेकिन जब मम्मा व्यक्त हो गई 65 में, तो बाबा ने दीदी को दिल्ली से मधुबन में बुलाया कि बाबा का साथ तो कोई ऐसा हो जो पूरी बहनों की संस्था को संभाल सके। तो बाबा के साथ दीदी 65 में फिर से मधुबन में रहने लगी साथ साथ, और बहुत कायदे, नियम, रेगुलरिटी, पंचुअलिटी। दीदी की क्या विशेषताएं आपको सुनाऊं कि अगर टाइम हुआ है तो 5 मिनट भी टीचर के पहले क्लास में पहुंचना, कोई भी स्टूडेंट टीचर आ जाए उसके बाद नहीं आना चाहिए, पहले हर एक को हाजिर होना चाहिए। तो दीदी क्या करती थी, लौकिक में पढ़ाई नहीं किया, लेकिन बाबा की मुरली से इतना जिगरी प्यार था जो मैं समझता हूं एक दिन भी बिना डायरी पेन के दीदी नहीं निकली। क्लास में जाना, उनके हाथ में डायरी पेंसिल जरूर होती थी, और स्टूडेंट लाइफ का फुल कदर था। मुरली कभी पढ़ करके दीदी ने नहीं सुनाई, मुरली दादी सुनाती थी। जब बाबा अव्यक्त हो गए 69 में, तो दादी बॉम्बे में रहती थी गामदेवी में, लेकिन दादी बहुत सहर नहीं सकती थी, बहुत पावरफुल थी। दीदी गोपिका थी, माना बाबा से बहुत प्यार था, लेकिन प्यार में जो शक्ति होनी चाहिए वो दादी के अंदर थी। इसलिए बाबा जब अव्यक्त हुए तो दीदी को बाबा ने बड़ी युक्ति से सेवाओं पर भेज दिया, क्योंकि वो दृश्य को सहन करना, बाबा के शरीर छोड़ने पर बहुत पावरफुल आत्मा सामने होनी चाहिए ना। तो दादी को बाबा ने रोक लिया। वो आई थी पार्टी लेकर के, तो 17 तारीख को बाबा ने कहा, बच्ची तुम्हारा बॉम्बे में कोई काम ना हो तो तुम पार्टी को भेज दो, तुम रुक जाओ। बाबा को तो पता था अव्यक्त होना है, और दीदी को 2-3 दिन पहले ही बोला तुम जाओ बनारस इलाहाबाद में सेवा करके आओ। दीदी को यहां से भेज दिया, जो यहां परमानेंट रहती थी, और दादी को बाबा ने अपने पास रख करके फुल गाइड किया, फुल दिखाया, पूरा यज्ञ संभाला, क्या कैसे चलता है, कौन संभालता है, कौन इंचार्ज है, सब दिखा के पत्र लिख करके दादी के साथ ही दादी के हाथ में हाथ देके शरीर छोड़ा। तो जब बाबा 21 तारीख को आए तो दीदी तो वहां से 1-2 दिन लग गए आने में, पहले तो मानती नहीं थी, बाबा ऐसा कैसे जा सकता, ये आप क्या बोल रही हो। फिर बुलाया दादी ने बड़े प्यार से, दीदी आप आ जाओ, बाबा कहीं नहीं गया है, आप आ जाओ बस मधुबन में, जरूरी है आपका आना। तो दीदी पहुंची 19 तारीख को शाम तक शायद पहुंची, और 20 तारीख को सब आने लगे, पार्टियां आ गई, और 21 को संस्कार हुआ। तो 21 तारीख को जब बाबा की फिर से पधरामनी गुलजार दादी के तन में हुई है, तब दीदी और दादी के ऊपर बाबा ने कलश रखा कि ये दोनों इस विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका रूप में, सहायक प्रशासिका के रूप में यज्ञ की कारोबार को देखेंगी, और जैसे बाबा ने साकार में आप बच्चों की पालना की है ऐसे साकार में करेंगी, और जब बाबा को बुलाएंगी इनके कहने से, जब प्रोग्राम बनेगा तो बाबा तो आपके साथ ही है, कहीं गया नहीं है, बाबा ने सिर्फ कमरा चेंज किया है, ड्रेस चेंज की है। तो दीदी और दादी को 21 जनवरी 69 में इस विश्वविद्यालय की टोटल कारोबार संभालने की जवाबदारी मिली। लेकिन दीदी और दादी की जोड़ी ने जो कमाल की है, वंडरफुल। मैं भी 2 साल के बाद आ गया, 71 में आया, तो यहां पर 30-35 भाई थे मधुबन में, और मैं छोटा ही था, घर से आया था, 15 साल की उम्र थी, पहली बार ही मधुबन में आया था। ज्ञान में तो सारा परिवार पहले से हर साल आता था, लेकिन मैं पहली बार आया था, और दीदी को कोई भी व्यक्ति आए तो दीदी की वो तीक्ष्ण बुद्धि, परखने की शक्ति बहुत थी। दीदी ने आते ही मुझे परख लिया कि ये यहां के लायक है, और परखने के बाद जब मेरा 1 मास पूरा हुआ, स्कूल का टाइम, छुट्टियां पूरी हुई, तो नेचुरल है स्कूल के लिए जाना ही था, तो दीदी ने मुझे डायरेक्ट कुछ नहीं बोला, लेकिन दादी को कहती है इससे, इस बालक से इंटरव्यू लो, ये रहने लायक है यहां पर। तो दादी ने मुझे इस झूले पर, यहां बगीचे में झूला पड़ा है, यहां बुलाया, और झूले में एक तरफ दादी बैठ गई, दूसरी तरफ मुझे बिठाया, और बोलती है कि आपके ऊपर दीदी की नजर पड़ी है, आपका क्या बैकग्राउंड है। दादी बहुत प्यार से सब पूछने लगी। तो जब मैंने बताया कि मैं लौकिक परिवार में इकलौता बेटा हूं, और मेरे पिताजी 3 भाई हैं, उनके बीच में मैं अकेला हूं, तो दादी बिल्कुल ऐसे देखने लगी मेरे को, कहती फिर कैसे तुमको छुट्टी मिलेगी। दीदी ने परख नहीं पाया, ऐसे ही दीदी दादी ने हमसे रूह रिहान की, और सब पूछने के बाद कहती है, तो हमने कहा दादी नहीं, मेरे पिताजी को बहुत निश्चय है, आप छुट्टी दो तो मैं छुट्टी ले आऊंगा। तो बोले ठीक है, अभी तुम्हारी उम्र भी छोटी है, 15 साल की है, 9th में पढ़ता था, अभी और पढ़ लो 2-4 साल फिर आना। ऐसे ऐसे मेरे को बहुत प्यार से समझाने लगी। तो मैंने कहा दादी, मेरे पिताजी ने कहा है बहुत जल्दी विनाश होने वाला है, 76 में विनाश हो जाएगा, मैं पढ़ के क्या करूंगा। तो दादी कहती है विनाश तो होगा लेकिन अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, अभी पढ़ाई करो थोड़ी फिर बताने। मतलब दादी भी मुझे ऐसे प्यार से समझाने लगी, क्योंकि उनको लग गया कि ये कैसे छुट्टी मिलेगी इनको। फिर भी अगर तुम्हारे पिताजी छुट्टी दें तो तुम 1 साल पढ़ करके हाई स्कूल कर लो फिर आ जाना। तो मेरे को बस इतना गाइडेंस चाहिए थी। फिर मैं बाबा के पास गया तो बाबा ने भी मुस्कुराते कहा कि अव्यक्त बाबा कमरे में आते थे कि दीदी दादी ने आपके ऊपर नजर डाली है, संकल्प पूरा हो जाएगा। और फिर दीदी ने बहुत युक्ति से परिवार से छुट्टी लेने के लिए युक्ति बताऊं क्या लिया, क्या अपनाई होगी, स्थूल युक्ति अपनाई दीदी ने। दीदी ने मेरे को यहां पर सारा स्टॉक जो है ना, कपड़ों का, बिस्तर का, अभी जैसे मुन्नी बहन संभालती है, उस समय संतरी दादी थी। और संतरी दादी लौकिक में बाबा की बहू थी, माना बाबा का जो भाई का लड़का था विश्वकिशोर दादा, उनकी युगल। और वो बाबा की बहुत फेवरेट संदेशी थी, बहुत यज्ञ के प्रति वफादार, बहुत धारणा युक्त संतरी दादी, वो स्टॉक संभालती थी कपड़े का। तो दीदी ने उसको इशारा किया कि इसकी अटैची मंगाओ, तो इसके पास कितने कपड़े हैं वो देखो। अब मैं तो गांव से आया था, मेरे पास 1-2 जोड़ी कपड़ा था, और लोहे की अटैची, लोहे की होती ना, वो थी बक्सा, लोहे का बक्सा था। तो मेरे को जब बुलाया तो मैं तो डर गया, हमने कहा ये अटैची मेरी क्यों चेक कर रहे हैं, कुछ मैं चोरी थोड़ी की है, क्यों मंगा रही है। नहीं नहीं तुम लेके आओ अपनी अटैची। तो जब मैं अपनी अटैची लेके गया कमरे में, तो दादी ने बड़े प्यार से 8-10 ड्रेस, बहुत अच्छी पैंट सूट, उस समय सब पैंट सूट पहनते थे। और वो यहाँ पर एक परिवार हांग कांग में रहता था, सिंधी परिवार, वो सभी भाई बहनों के लिए हर साल बड़े बड़े गठरियां पैंट सूट की वहां से बनी बनाई रेडीमेड भेजता रहता था यज्ञ के लिए। तो बहुत प्यार से सजा के अटैची मेरी तैयार कर दी दादी ने, संतरी दादी ने। तो मैं देख करके हैरान हो गया, हमने कहा दादी ये मैं क्यों ले जाऊं, गांव में जा रहा हूं, मैं कब पहनूंगा। बोली पहनना नहीं भले, कभी कभी पहनना, तो जब देखेंगे ना कि संस्था के अंदर एक मास के लिए गया और इतना सारा इनकी खातरी हुई तो तुमको फटाफट छुट्टी मिल जाएगी। इतनी सारी खातरी, एक मास में इतना सेवा, माना यज्ञ संस्था इनकी बहुत पैसे वाली है मतलब। तो बड़ी युक्ति से मुझे 8-10 जोड़ी पैंट सूट सजा करके अटैची लोहे की वो बॉक्स भर करके दिया, और फिर अलग से बुला के दादी ने सौगातें भी अच्छी अच्छी दीदी ने दिया। और लेकर के जब मैं गया, और मेरे को तो पहनने की आदत ही नहीं थी पैंट सूट पहनने की, ये सब फिर भी कभी कभी 1-2 बार पहना होगा। लेकिन पिताजी को तो कोई ये बातें संकल्प में नहीं थी, लेकिन दादियों को था कि इनके परिवार के और लोग तो मना करेंगे ना कि तुम क्यों जाता है, तेरे 3 बाप की प्रॉपर्टी है, 3 की खेती है, 3 की दुकानें हैं, इन सबको छोड़ के तुमको क्या जरूरत है किसी संस्था में जाने की। तो उनको कैसे कन्विंस किया जाए, तो इसलिए इन लोगों ने ऐसी युक्ति दादियों ने हमारी कर ली। तो जब मैं गया लौकिक में, और मुझे तो एकदम विश्वास हो गया था कि मुझे तो यही सेवा करनी, मेरा तो यही घर है। तो जब बताया पिताजी को, तो पिताजी को तो बड़ा नशा, बड़ी खुशी, कहने लगे अच्छी बात है, अगर आपको चांस मिल जाएगा तो हम लोगों को भी मिल जाएगा। तो जब मैं 1 साल पढ़ाई पूरी की, बहुत प्यार से पत्र लिखा, और वो पत्र लेकर के मैं 7 अप्रैल को यहां आ गया 1972 में। और जब आया गेट में घुसा तो दादी मेरे को ऐसे देख के एकदम ऐसे खड़ी थी, तुमको छुट्टी मिल गई, तुम आ गया, चिट्ठी लाए हूँ। वैसे नहीं, ऐसे तो बाकी नहीं आ गए। तो हमने कहा हाँ दादी, बहुत प्यार से पिताजी ने चिट्ठी दी है और मैंने उसी समय चिट्ठी दादी के हाथ में दे दी। तो दादी ने पढ़ा, अच्छा अच्छा बहुत अच्छा है, भले भले जाओ। स्टाक में वो एक शांति माता यहाँ रहती थी, बोला ये शांति माता के साथ तुम सेवा करना, क्योंकि मैं बच्चा ही तो था, स्कूल से आया था और मुझे कुछ पता भी नहीं था सब संस्था क्या है, कैसे चलता है सब यज्ञ। तो शांति माता यहाँ आवास निवास को, बिस्तर विभाग को संभालती थी। जो आते थे उनके, उस समय मधुबन में सिस्टम ये थी कि कोई भी आता था ना, पूरा बिस्तर होल डाल इतना बड़ा भर के ले आता था सामान। यहाँ कुछ नहीं मिलता था, रजाई गद्दा कंबल, बाल्टी लोटा भी लेके आते थे, बाल्टियां भी नहीं मिलती थी। ट्रेन में सब लेके आते थे और नहाते धोते हुए ट्रेन में आते ना, तो गर्म पानी वो चलती थी ट्रेन इंजन वाली, तो वहां से गर्म पानी लेके बहने नहा के भी आते थे। तो वो उस समय इतने बड़े बड़े होल डाल, बड़े बड़े बिस्तर, और मैं शांति माता के पास रहा, तो वो सुबह से उठाना, इधर ले जाओ, उस कमरे में पहुंचा के आओ, उस कमरे में पहुंचा के आओ, क्योंकि यज्ञ में मजदूर नहीं थे, कोई भी एक भी मजदूर नहीं था, हर सेवा में भाई थे समर्पित, और बहुत थोड़े थे, इसलिए हर एक को कम से कम 8-10 डिपार्टमेंट में सेवा करनी पड़ती। तो अमृत वेले से लेके 3-4 बजे से हम लोगों की एक कारोबार वाली सेवा, स्थूल सेवा, माना पानी गर्म करना, एक बॉयलर था, बॉयलर भी एक टंकी थी, ये रनिंग वाटर नहीं था, तो टंकी रात को गर्म करते थे, और 4 बजे जब सब योग में आते थे तो सब बहनों के कमरे में, भाई मेरे को 2 बाल्टी देना, मेरे को 3 बाल्टी देना, मेरे को आशीर्वाद धुलाई करना है। तो सुबह सुबह लेकर के हम 3-4 भाइयों की ड्यूटी होती थी, तो सबके कमरों में इधर योग करते हम लोग, बाल्टियां सबके कमरे में पानी पहुंचाते थे। और जब मुरली शुरू होती थी तो हमारा धोबी घाट शुरू होता था। वो धोबी घाट ऐसा नहीं था ये मशीनों वाला, वो धोबी जो पटका पर चटका लगाते ना ऐसा। लेकिन कभी ये सेवाएं करते हुए ये संकल्प नहीं आया कि मैं इस सेवा के लिए थोड़ी आया हूं, बहुत प्यार से। और दादी दीदी की जो पालना थी ना, वंडरफुल थी। माना किसी ने सेवा की है तो उसको बुलाएंगी, प्यार करेंगी, फिर उसको हलवा खिलाएंगी, टोली खिलाएंगी, स्पेशल सौगात देंगी, पिकनिक कराएंगी, सब कुछ। वो जो प्यार था ना परिवार का, मैं समझता हूँ, मैं सटका लगाने में रहता था ना, धोबी घाट में जो नील लगाते थे, सुखाते थे, उनको कम मिलता था, लेकिन जो चटका लगाते थे उनको डबल हलवा मिलता था, क्योंकि इतनी मेहनत वाला काम था ना। और वो 1 घंटे में फ्री, 2 घंटे में फ्री हो जाते थे, बाकी सब दोपहर तक अपना निचोड़ते सुखाते रहो, चटके चले गए हम। तो बहुत मजा आता था, परिवार था। और दीदी दादी को ये रहता था कि ये सब भाई इतनी सेवा करते हैं, इनको पिकनिक भी कराएं, इनको घूमने भी भेजें, कहीं ले भी जाएं। तो यहाँ पर पहली पहली एक गाड़ी लेने के लिए आनंद स्वर दादा थे, उनको भेजा, गाड़ियां नहीं थी मधुबन में, एक गाड़ी थी, उसको हमने नाम दिया था नानक नाम जहाज है, चढ़े तो उतरे पार। उसको अगर हमें कोई चढ़ के कहीं पीस पार्क वगैरह उस साइड में चले जाए ना गुरु शिखर, तो 3-4 जगह खड़ी हो जाती थी और हम सब धक्का लगाते थे उस। और जो चलाने वाला था ना, वो बार बार वो बिछाता था बोरी, उसके नीचे लेट जाता था, ठीक करता था कुछ, फिर ठीक करता था, फिर निकलता था, फिर चाहत चलाता था। वैसी गाड़ी थी, धक्के गाड़ी। तो दादी ने एक बार बोला जाओ तुम्हें कोई गाड़ी खरीद के लिए, आनंद सो दादा को बोला। वो जयपुर गए और एक बड़ी बस 25,000 रुपए की ले आए, बस लाए, और वो बस ऐसी थी, उसका बाद में ट्रक बना, इतनी पुरानी बस थी। तो जब यहाँ इतनी बड़ी बस आ गई 30-40 सीट वाली, तो सबने सबके संकल्प चू 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 होने लगा, क्या जरूरत थी इतनी बड़ी बस लाने की, कहाँ ले जाएंगे। और बस तो पुरानी एकदम खटारा, जो रिजेक्ट हो जाती है ना, गवर्नमेंट के रिजेक्ट सीट कर देते, वो उठा के लाए, उसका इंजन बड़ा मजबूत था। तो जब वो ले आए तो दादियों को तो बड़ा वो रहता था ना, किसी को कट नहीं करते, रिस्पेक्ट देना एक उनका फर्ज था। तो कहती है अच्छा हुआ इतनी बढ़िया गाड़ी आई है, चलो हम सब उदयपुर घूम के आते हैं, कोटा घूम के आते हैं। तो दीदी और दादी दोनों ही मधुबन के सब भाई बहनों को 5-7-10 छोड़ दिया कि तुम यहां संभालो, हम इन सबको घुमा के पिकनिक करा के लाते हैं। सेंटर नहीं थे उस समय यहाँ, उदयपुर, कोटा, बूंदी। और दीदी दादी ने हमारे साथ जो 3 दिन 2 दिन सफर किया, क्या पिकनिक कराई, क्या मौज कराई होगी। तो वो उदयपुर में ले गई उन बस में, बस सफल हो गई, 25,000 निकल आया, सबका संकल्प पूरा हो गया, क्यों ऐसी बस लेके आए। और वो इतनी भाग्यशाली बस थी कि उसके बाद ही लाइन लग गई बसों की, गाड़ियों की, ट्रक। फिर उसका इंजन बहुत मजबूत था इसलिए उसको फिर ट्रक बनवा दिया, उसको चारों तरफ से ट्रक में उसका इंजन यूज किया। फिर एक ही ट्रक फिर था दूसरा, फिर उसके बाद तो भी देखो बाबा ने क्या दिया। तो कहने का भाव है वो बेगरी पार्ट था और दीदी की बहुत एक्यूरेसी, बहुत अलर्टनेस, पालना कैसे करती थी। अमृत वेला अगर हम लोग एक दिन मिस करें, मुरली क्लास में कोई ना आए, ऐसा बुलाती थी, ऐसा प्यार से कान खींचती थी, पहले पूछती थी तुमने नाश्ता किया है। हाँ दीदी किया है। अच्छा तबीयत ठीक है। ठीक है तुम्हारी तबीयत भी ठीक है, तुमने नाश्ता भी किया, फिर आज क्लास में नहीं दिखाई दिए, कहाँ गए, क्यों नहीं आए। तुमको पता है ब्राह्मण जीवन के लिए दो ही चीजें चाहिए, एक मुरली और एक अमृत वेला। अगर ये मिस कर दिया माना ब्राह्मण नहीं। बहुत प्यार से ट्रेनिंग देती थी, प्यार से शिक्षाएं देने का तरीका था। कभी भी बिस्तर पर जाके कोई योग के बाद सो जाए तो बहुत नजर रखती थी कि देखो कहाँ है, क्यों सो गए जाके, सब जवान तो लड़के छोटे छोटे, तो हम उम्र में बहुत कम थे, तो दादी का ये ध्यान रखता था कि ये सुस्त न हो जाए कहीं। तो एक मिलिट्री वाला भाई यहाँ आया पहले पहले, और उस मिलिट्री वाले भाई की ड्यूटी लगा दी कि इनको सबको सवेरे सवेरे नक्की लेक पर दौड़ लगवाना है, नक्की लेक पर सुबह सुबह दौड़ लगवाना है। तो सवेरे सवेरे योग के बाद वो 5:30 बजे आ जाता था कमरों में, कोई सोया हो उसे उठा के खड़ा कर देता था, चलो चलो दादी ने कहा पीटी करना है, दौड़ लगानी, डेली का रूटीन बना दिया उसने, कोई को सोने नहीं देना। अमृत वेला हुआ, फटाफट नहाओ धो और चलो 5:30 निकल जाना, नक्की लेक का राउंड लगा के वहां पीटी कराता था, खड़े होके आगे खड़ा हो जाता, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, मिलिट्री का तो था ही। तो बहुत प्यार से दादियां हर चीज का ध्यान रखती थी, इनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे, सेवाएं भी बराबर हों और इनकी उन्नति भी होती रहे। लेकिन मेरा पार्ट थोड़ा सा सेवाओं के साथ साथ, मैंने एक दिन ऐसे ही दीदी और दादी दोनों बीमार पड़ी और बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती हुई। तो मधुबन वालों का तो प्यार बाबा के बाद तो इन दीदी और दादी में टू मच था। तो दादियों ने कहा कि इनको संकल्प चलते हैं, भले बॉम्बे भी नहीं देखा तो सब लोग घूमने के लिए एक नंबर वार आओ, मिलके भी जाओ और बॉम्बे घूम के जाओ। तो सब लोगों को छुट्टी मिली, यहाँ मधुबन वालों को नंबर लगे, दो दो दिन के लिए सब गए घूमने। लेकिन जो टाइप भाई करता था ना उसको छुट्टी नहीं मिली, जो मुरली टाइप करता था। क्यों नहीं मिली? क्योंकि अगर ये चला जाएगा तो मुरली बंद हो जाएगी, प्रश्नोत्तर कौन टाइप करेगा, मुरली कौन टाइप करेगा। तो जब सबको छुट्टी मिली उसको नहीं मिली, तो वो मेरे साथ ऐसे हम बैठे थे, कहता तुम हिंदी जानता है तुम टाइप सीख लो ना। और मेरा तो संकल्प यही था कि मैं टाइप सीखूं यहाँ आया हूं, तो मैंने तुम मुझे सिखा दो। कहता लेकिन सिखाने के लिए पूछना तो पड़ेगा दीदी दादी से, ऐसे कैसे सिखा दूं। तो जब उसने यहां से इस मैसेज भेजा तो वहां से मैसेज आता है दीदी का, ठीक है तुम सिखाना चाहते हो तो भले सिखाओ, लेकिन पहले उसको सिंधी सीखनी पड़ेगी, और जब सिंधी सीखेगा उसके बाद टाइप में हाथ लगाने देना, क्योंकि टाइप एक ही है और खराब हो गई तो तुम देखना मुरली नहीं बंद हो जानी चाहिए। एक ही टाइप राइटर था। अब वो सिखाए कैसे, बेचारा डर गया कि अब कैसे सिखाएंगे, बड़ी नियम बना दिए। तो मैंने कहा अच्छा सिंधी क्या होती है, मुझे तो पता ही नहीं था सिंधी क्या होती है। तो बोला नहीं दादा विश्व रतन के पास आप बैठो और वो सिखा देंगे। तो मैं अमृत वेले योग के बाद दादा के पास जाता था, दादा यहीं रहते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको सिखा दूंगा, तुम ख्याल नहीं करो। तो मैं का खा गा हिंदी के अक्षर सब लिख के ले जाता था और उसके ऊपर वो सिंधी में लिख देते थे, मैं मिलाता रहता था। फिर मैं समझता हूँ 1 हफ्ता 10 दिन मुझे लगा, मैं पढ़ना शुरू कर गया। पढ़ना शुरू कर दिया, फिर लिखना शुरू कर दिया सिंधी में। तो जब मैं सीख गया तो हमने कहा अभी टाइप सिखा दो, मैं पढ़ना सीख गया। तो भाई को बड़ी खुशी हो गई और उसने मुझे टाइप सिखाना शुरू किया। और दीदी दादी जब वापस आ गई बॉम्बे से तो दीदी कहती है तुम टाइप सीखने लगे, तुमने सिंधी सीख ली? हमने कहा हाँ दादी, दीदी मैंने सीख लिया। बोली अच्छा ठीक है, तुम मेरी राइटिंग जिस दिन पढ़ोगे उस दिन सीख गया। अब वो दीदी की राइटिंग तो बड़ी वंडरफुल थी, कोई नहीं पढ़ सकता, सिंधी लोग भी नहीं पढ़ पाए क्योंकि वो पढ़ी हुई तो थी नहीं जो अच्छी कोई ऐसे लिखे। उनकी शॉर्ट हैंड भी बड़ी वंडरफुल, अगर लक्ष्मी नारायण लिखना तो एल और एन लिखा हुआ है, परमपिता परमात्मा लिखना तो पीपी लिख दिया है। बहुत शॉर्ट हैंड बहुत अच्छी थी, क्वेश्चन नहीं लिखना, पी लिखना माना प्रश्न है, ए लिखना माना उत्तर। तो माना उनकी जो डायरी थी और उसको पढ़ना कहते हैं बहुत मुश्किल था। तो मेरे को दिया, मेरे पास अभी भी दीदी की बहुत सारी डायरियां हैं। तो दीदी ने दिया, मैंने ले लिया। हमने कहा दीदी ये तो मेरे से नहीं पढ़ा जाता है। बोली एक बात बताती, यहाँ पर कमल मणि दादी है ना, बहुत अच्छी जानती है मेरी राइटिंग, वो पढ़ लेती है, तुम उससे पास जाया करो, वो सिखा देगी तुम। तो ऐसे करके कमलमणि दादी दीदी के साथ यहाँ रहती थी मधुबन में उस समय, अभी कृष्णानगर में अभी भी है, दिल्ली कृष्णानगर में। तो दादी ने मेरे को दीदी की राइटिंग पढ़ना सिखाया, बहुत प्यार से कहती थी इसका अर्थ ये, इसका अर्थ ये, ऐसे। तो हम वो सब सीख गए। तो दीदी की एक बहुत बड़ी विशेषता ये थी कि दादी मुरली सुनाती थी, दीदी सामने ऐसे बैठती थी, जैसे बैठी ना ऐसे बिल्कुल सामने, और जितनी मुरली सुनती थी उसके सबके प्रश्न बनाती थी, प्रश्न उत्तर। और बनाने के बाद जब मुरली पूरी हो जाती थी तो अपना मुंह ऐसे घुमा देती क्लास की तरफ और कहती है अभी 15 मिनट बैडमिंटन खेलेंगे, मेरे प्रश्न आएंगे और तुम्हारे उत्तर आएंगे, और जो पास होगा उसको डबल टोली मिलेगी और जो फेल होगा उसकी टोली बंद। चिट चैट, वो छोटा हाल था, ये सब नहीं था, ये मेडिटेशन हाल ओम शांति भवन कुछ नहीं था, वो छोटा हाल था और एक भी चेयर नहीं थी, बिना चेयर वाला हाल था, ये कुर्सियां नहीं थी। तो हम सब जितने भाई बहने थे हरेक का हाजिरी होता था, कोई ऐसा नहीं एबसेंट कर देगा, तो ऐसे बिठाती थी, इधर निर्भय भाई बैठेगा, इधर चंद्रास बैठेगा, इधर विश्वतन दादा बैठेगा, इधर आनंद सुर दादा बैठा है, इनके पीछे बैठेंगे, इनके पीछे बैठे, पूरा लाइन में ऐसे सबको बिठा करके। और फिर जब मुरली पूरी हो गई तो सबसे प्रश्न उत्तर पूछना एक एक से, तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ, ऐसे पूरे क्लास में 15-20 मिनट में। और ऐसे टेढ़े प्रश्न होते थे कोई उत्तर नहीं दे पाए, हाय उसी मुरली के। तो खूब चिट चैट होती थी 15-20 मिनट। उसके बाद मुझे बुलाती थी कि तुमको जो प्रश्न अच्छे लगे ना, अब तुम टाइप सीख गया, तुम कार्बन कापियां निकाल के ले लो। क्योंकि दीदी की आदत थी जितने पत्र आते थे बाबा के बाद, दीदी ने जवाबदारी ली कि जो पत्र आएंगे उसका जवाब मैं दूंगी। तो सभी सेंटर्स के पत्र आते थे, अब पत्र में क्या क्या लिखा जाएगा, और उस समय वो इंग्लैंड जो था ना 10 पैसे का था, कहती 10 पैसे वाला तुम टाइप करके ले आओ, कितनी कापियां निकालनी वो नहीं, जितनी पत्र आते हैं उन सब का उत्तर देना है। एक तरफ पूरी मुरली के प्रश्न उत्तर, फर्स्ट फ्रंट होता ना इंग्लैंड का, और सेकंड में जो टुकड़ा होता है उसमें पत्रों का उत्तर। तो मेरे को ये ड्यूटी मिली कि दीदी की डायरी में ले जाता था, और फिर 5 कापी 6 कापी कार्बन कापी एक बार में निकलती थी, मुश्किल से अच्छे कार्बन लगाते थे, इसलिए फोटो कापियां ये तो कुछ थी नहीं। तो मैं 3 बार 4 बार 5 बार यही लोहा ठोकता रहता ऐसे ऐसे टाइप कापियां प्रश्न उत्तर निकालता रहता था। और वो भाई जो सिखा रहा था मुझे, 3-4 साल में मैं बिल्कुल जब एक्सपर्ट हो गया, 73 में शुरू किया, तो 73 से ही मेरा ये पार्ट शुरू हुआ कि दादी ने ऐसा समझा कि यीशु दादी अकेली है। यीशु दादी वैसे बाबा के साथ बैठती थी, जो बाबा बोलते थे लिखती थी, अब वो कितना लिखेगी, तो मेरे को कहती थी तुम भी बाबा के पास बैठो। अब एक बाबा जब आते थे वो पूरी रात रहते थे, शाम को बाबा आ गए 7 बजे तो सुबह 7 बजे 8 बजे तक बैठे हैं, और पूरी रात यीशु दादी बैठे तो थक जाए, तो मेरे को कहा तुम भी बैठा करो साथ, और जो बाबा बोलता है तुम लिखो। तो मेरी ये ड्यूटी लग गई बाबा के पास बैठने की रात को, और धीरे धीरे मैं बाबा की पूरी जितनी बाबा बोलता था जो बोलता था वो मैं सब लिख लेता था। उस समय टेप राइट टेप ये कुछ नहीं होता था, और फिर सुबह सुबह मैं उसको वो भी टाइप करता रहता था कि आज रात में ये बोला, आज इसको ये वरदान दिया, आज इसको ये बाबा ने कहा, और हर एक मेरे पास लाइन लगाता था कि मेरे को जो बोला मेरी समझ में नहीं आया, आपने लिखा मेरा टाइप करके दे दो। यही सारी ड्यूटी, धीरे धीरे हमारी सब ड्यूटियां जो थी ना साइड होती गई। और 76 में अचानक वो भाई को कुछ हुआ तो उसको लौकिक जाना पड़ गया। लौकिक में गया, वापस नहीं आया, सारी ड्यूटी सारी डिपार्टमेंट मुरली की मुझे मिल गई। और वो मुरली की डिपार्टमेंट 76 में जो मिली वो आज तक भी वैसे ही विधिवत चल रही है 76 से अभी तक भी। लेकिन मुरली तो वही है, उसमें नवीनता होनी चाहिए, उसमें कुछ लोगों को प्राप्ति होनी चाहिए, 5 साल की मुरलियां। तो उसके लिए फिर दीदी और दादी जब तक रही बहुत ध्यान जाता था मुरली के ऊपर। वो हमेशा कहती थी ये रिपीट नहीं है, माना रिपीट माना शब्द भाई शब्द रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब बाबा के कई ऐसे शब्द हैं सिंधी के हैं, बाबा के अपने लौकिक अनुभव के हैं, समय अनुसार उसमें परिवर्तन होना चाहिए, उस समय के अनुसार बाबा ने बोला है, इसलिए रिवाइज कर रहे हो, रिपीट नहीं कर रहे हो। रिवाइज में जो बात जरूरी नहीं है उसको हटा दी जाती, हटा दो। तो दादी खुद ही मुरली उठा करके ब्रैकेट लगाती थी कि ये जरूरी नहीं, समय के अनुसार ये जरूरी नहीं है। तो ऐसे करके मुरली कटने लगी, मना करेक्शन होने लगी उसके अंदर। और साथ साथ कि हमारी सेंटर्स बढ़ते जा रहे हैं, विदेश में सेवा केंद्र बढ़ते जा रहे हैं, भारत की फिलॉसफी है कई लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए ध्यान रखना है कि कोई की बातों को बाबा ने जो बोला है बच्चों के सामने बोला, कोई को ठेस नहीं लगनी चाहिए बाबा के शब्दों से। कोई ऐसे शब्द मुरलियों में आते हैं जो बैठे होते अगर सभा के बीच में तो उनको लगता है ये बाबा कैसे बोलता है, भगवान नहीं बोलता। और बाबा तो बच्चों के आगे बोल दिया, मान लो आज बाबा ने आपको ट्रेनिंग दी, बच्चे ये गंदा काम है, ये नहीं करना, देहमान में नहीं आना है, मिट्टी में लेटना है, तो कभी कभी कह दिया देखो आज धोबी है ना अपने गधे का इतना श्रृंगार करता, नहलाता धुलाता है, गठरी लाता है कपड़े की, और जाकर के यहाँ स्नान पानी कराया, श्रृंगार किया, फिर जाके मिट्टी देखी उसमें लेट गया। मेरे बच्चे भी गधे के बच्चे, गधे सुधरते ही नहीं है। अब ऐसे शब्द अगर मुरली में भी डाल दिए जाए तो क्या होगा, कहीं भगवान ऐसे कैसे बोलता है। अब उस समय तो बाबा ने बच्चों को सिखाया कि बच्चे ऐसा नहीं करना चाहिए, बाबा इतना प्यार से समझाता है, तुम्हारा श्रृंगार करता है तो तुमको श्रृंगार का रिटर्न करना चाहिए, लेकिन फिर भी मिट्टी में लेट जाते, देहमान में आ जाते। कभी कहेगा कि अगर भैंस के आगे हॉर्न बजाओ तो क्या होगा, हॉर्न बजाते रहो, वो अपना खाती चबाती रहेगी, हटेगी नहीं। तो मेरे बच्चे भैंस बुद्धि हैं, मैं बाबा इतना समय का हॉर्न बजा रहा है ये हिलते नहीं है, आगे नहीं बढ़ते हैं। तो ये जो शब्द थे भैंस बुद्धि, गधा बुद्धि, बंदर बुद्धि, पत्थर बुद्धि, पत्थर बुद्धि तो अभी भी डाल देता हूं लेकिन ऐसे जो शब्द बाबा के आए वो बच्चों के सामने तो सल जाते हैं। अभी तो बच्चे बढ़ोत देश विदेश में हो गए, हर भाषा में मुरली ट्रांसलेशन होती है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ा। दादियां बहुत ध्यान खिंचवाती थी कि नहीं बाबा ने अपने बच्चों के आगे 20-25 बच्चों के आगे बोला है। ज्ञान शिव बाबा का जो परफेक्ट है उसमें कोई करेक्शन नहीं है। ब्रह्मा बाबा के जो अपने अपने अनुभव हैं निजी बाबा के ज्ञान में, उसमें करेक्शन करने की जरूरत नहीं। लेकिन समय अनुसार अगर कोई ऐसी शिक्षाएं बाबा ने दी हैं जिससे लोगों को लगे कि अरे बाबा ऐसे कैसे बोलेगा, कड़े शब्द जो सहन नहीं होते वो फिर कट करने पड़ते हैं, उनको निकाल दिया। अभी मुरली के अंदर आप कहीं भी सुना दो, सभा के बीच में भी सुना दो, तो लोगों को ये नहीं लगता है गलत, ये नहीं बोलना चाहिए। फिर भी कभी कभी आ जाते हैं। एक दिन बाबा की मुरली में आ गया कि देखो विवेकानंद इतनी बड़ी हस्ती मानते हैं, उसको इतना मानते हैं, वो मछली खाता था। एक दिन मुरली में आ गया। अब वो बंगाली लोग इतना भड़क गए उसे कि बाबा कहता गुण देखना चाहिए, बाबा गुण तो देखता नहीं है, एक मछली खाता था उसका वर्णन कर दिया। अब वो आके मेरे पर बिगड़ने लगा कि बाबा ने ऐसे कैसे बोला, आपने ध्यान नहीं दिया। मैं भाई आगे के लिए ध्यान रखूंगा, बाबा ने तो बोला था अब ध्यान मुझे रखना पड़ेगा। तो फिर अभी समय अनुसार बंगाली लोग बहुत क्लास में आते हैं, अब उनकी तो आदत थी मछली खाने की, उसके बिना रहे नहीं। अब खाते होंगे उस समय, उसमें तो अब बाबा के बच्चे नहीं खाते हैं, लेकिन उनको लगता है कि हमारे जो बड़े हुए उनके प्रति बाबा ऐसे क्यों बोलता है। अब शंकराचार्य के लिए, सन्यासियों के लिए बाबा ने कुछ ऐसे शब्द उस समय बोले हैं, क्योंकि वो हमारे प्रदर्शनी को आग लगा देते थे, गालियां देते थे। इधर हमारे प्रदर्शनी लगी है, सामने माइक लगा के बोलते थे ये सनातन धर्म की नहीं है, बहुत सारी उल्टी सुलटी बातें बोलते थे। अब वो समय नहीं रहा, अभी तो आके क्लास में बैठते हैं, अभी तो महिमा करते हैं कि सनातन धर्म की रक्षा आप ही कर सकते हो। तो समय बदल गया, उस समय जो विरोध था तो विरोध के शब्द थे, अभी वो विरोध नहीं रहा है तो अभी वो शब्द की जरूरत नहीं रही, तो इसलिए कुछ परिवर्तन करना पड़ता है। लेकिन मुरली के अंदर वरदान, स्लोगन, धारणाएं, ये सब दादियों ने समय पर समय मुझे इशारा करती गई कि ये करना चाहिए, ये करो, ये करो, ये करो, तो उसमें थोड़ा थोड़ा एडिशन होती गई। ये एडिशन है, करेक्शन है शब्दों की बताई, बाकी ये एडिशन है, क्योंकि मुरली केवल ओम शांति से नमस्ते तक है। पहले थोड़ा गीत बजता, फिर बाबा गीत को रुकवा के ओम शांति बोल करके मुरली सुनाते, और गेट पर खड़े होके रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते करके चले जाते थे। अब उसमें कोई को 15 मिनट टाइम है, कोई फोन पर मुरली पूछ रहा है कि बहन जी आज मेरे पास टाइम नहीं, आप 2 मिनट में सार सुना दो, उसका क्या है। अब बहन 3 पेज की मुरली से सार निकाल के उनको बताए, तो उसमें टाइम चाहिए, उसको टाइम है या नहीं है किसी के पास, क्या सुनाती है, अपने मन से सुना दे कुछ। तो इसलिए दादी ने कहा नहीं, तुम सार लिखो, प्रश्न उत्तर लिखो, धारणा की सार लिखो। फिर 88 में बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने एक बार मधुबन के लिए डायरेक्शन दिया कि मधुबन निवासियों से बाबा मिलने आएंगे 88 में। दीदी तो अव्यक्त हो गई 83 में, लेकिन 88 में जब बाबा अव्यक्त आए तो मधुबन वालों का टर्न लगा। हम 120 भाई उस समय हो गए थे, तो बाबा ने कहा मधुबन निवासियों से खास मिलने बाबा आएगा। ओम शांति भवन उस समय बन गया था। तो जब बाबा आए तो बाबा ने रात भर मधुबन वालों से मिला, लेकिन 120 भाई ही मिल पाए, बहने रह गई। शाम को शुरू किया 7 बजे, सुबह 7:30 बजे मेरा टर्न आया बाबा से मिलने का, मैं लास्ट था, 1-2 और होंगे उसके बाद। तो इतना बोला मैंने, पूरी रात लिखा सबके वरदान, और लिख करके जब सवेरे टाइप किया तो इतनी सारी मोटी किताब जैसी बन गई। फिर दादी को मैंने बताया कि दादी आज तो बाबा ने बहुत वरदान दिए हैं। बोली क्या करोगे? हमने कहा जिनको है उनको मैं दे देता हूं। बोली बस इतना ही काम पूरा हो गया? नहीं नहीं, ये केवल इनके लिए थोड़ी बोला बाबा ने, ये सारे ब्राह्मणों के लिए, तुम कुछ करो, इसको सेट करो और मुरली के नीचे शुरू करो। तो वो जब 120 वरदान मैंने सेट किए तो कम से कम 1 साल के वरदान हो गए, माना पूरा तो नहीं लिख सकते, 2 वरदान 3 वरदान एक एक के उसमें से मिल गए। ऐसे करके वो मैंने 1 साल वरदान चलाए मुरली के नीचे शुरू किया। पहली लाइन मैं बनाता हूं, भाव वाली लाइन बाबा ने नहीं बोली, लेकिन उसका स्पष्टीकरण सारा बाबा की मुरली से है। तो वो लाइन शुरू किया और वरदान जब मुरली में शुरू हो गए 1 साल के बाद, मैंने कहा दादी अब क्या करूं, बंद कर दूं? बोली अरे इतना लोग खुश होते हैं इससे, तो इतनी नोट्स लेते हैं, इतनी प्रोत्साहित करते हैं, तुम बंद कैसे करोगे इसको? क्या करूं अभी? 1 साल के लिए बाबा ने बोला हो गया। तो बोली नहीं नहीं, तुम फिर स्टडी करो और बनाओ। फिर मैंने 69 से जितनी मुरलियां चली थी सबकी स्टडी करके वरदान सेट किए, और वो वरदान मुरली 5 साल की है, लेकिन मेरे पास वरदान बन गए 6 साल के, और इतने अच्छे बन गए कि जो अभी कोई कोई रिवाइज करता हूं, लेकिन अधिकतर सब नए वरदान शुरू किए। तो वो सारी मुरलियों की स्टडी से निकल ले गए। तो इस प्रकार वरदान शुरू हुए। अब मैं दीदी की 1-2 विशेषताएं बता दूं, क्योंकि दीदी के दिन है कल, पर 28 तारीख को दीदी ने शरीर छोड़ा, कैसे छोड़ा उसकी कहानी है। दीदी अमृत वेले रोज योग कराती थी 4 बजे, नियम था दीदी कराएगी और कोई नहीं कराता था, और छोटे हाल में ही योग होता था। अधिकतर हम मधुबन निवासी होते, जब पार्टी आती थी तो ये हाल हमको 75 में मिला बन के। 75 के बाद यहाँ पर योग क्लासेस शुरू हुई, लेकिन अधिकतर छोटे हाल में हिस्ट्री हाल में चलता था। तो दीदी एक दिन आई, तैयार होती थी, छोटा स्नान ऐसे करके थोड़ा सा, तो तैयार होते होते गिर गई बाथरूम में, और जब गिर गई तो दीदी को यहां थोड़ी चोट आई। योग तो कराया लेकिन शक पड़ गया कि गिरी क्यों, तो चेक कराया तो डॉक्टरों ने कहा दीदी की रोशनी आंख की कुछ कम हो रही, आंख पर कुछ है। तो चेक कराने के लिए दीदी को बॉम्बे ले गए, और जब डॉक्टर ने चेक किया तो उसने कहा कि दीदी की आंख में प्रॉब्लम नहीं है, आंख के ऊपर यहां छोटा सा एक ट्यूमर है और इस ट्यूमर का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ट्यूमर का ऑपरेशन, उसने कहा बहुत छोटा सा है, बहुत हल्का सा है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दीदी को उसी ऑपरेशन से अव्यक्त होना था। तो जब ऑपरेशन हो गया तो उसके बाद दीदी कॉन्शियस में नहीं आई, करीब मैं समझता हूं 15-20 दिन हॉस्पिटल में रही, और उसी ऑपरेशन से वो कोमा में चली गई, कुछ पता नहीं दीदी को। 28 तारीख को शरीर छोड़ा, उन्होंने वहां से लेकर के दीदी को यहां आए और 30 जुलाई को यहां संस्कार हुआ। दीदी बहुत समय से एक पुरुषार्थ करती थी, जो बाबा कहते ना अंतिम पुरुषार्थ, सब बातों से उपराम। पहले दीदी की दिनचर्या में पढ़ाई के ऊपर फुल ध्यान था, कोई पार्टी आ जाए उसको हर प्रकार से रिफ्रेश करना, वो गंभीरता रमणीकता हर प्रकार से उसकी पालना, ब्रह्मा भोजन खिलाना, उसको पिकनिक कराना, उसको हर प्रकार का ध्यान रखना, क्योंकि पालना देने में नंबर वन थी। कोई भी कुछ करे सेवा करे तो देखो उसको कितना रिटर्न देते। लेकिन धीरे धीरे उपराम होती गई और बस एक ही धुन लगा दी, अब घर चलना है, अब घर चलना है, अब घर चलना है, उसके ऊपर ही गीत बना, अब घर जाना है। तो उपराम तो थी ही सब बातों से। और यहां से हम लोगों से जब छुट्टी ली, इसी हाल यहां से मैदान इधर चांदनी चौक में इसको बोलते हैं, पांडव भवन के आंगन से, तो दीदी छुट्टी लेते समय उपराम थी बिल्कुल, जैसे बिल्कुल जा रही आएगी नहीं वापस। और सबसे बड़े प्यार से मिल मिल करके दृष्टि दे के टोली खिला के जैसे छुट्टी लेके यहां से गई। और वहां ऑपरेशन थिएटर में जब जाने लगी तो गुलजार दादी और बड़ी दादी ने विदाई दी और बाबा आए गुप्त रीति से, बाबा आए दीदी को विदाई दी वहां पर बिल्कुल जैसे छुट्टी ले रही है। और वहां से ऑपरेशन में गई और उसके बाद तो दीदी ने आंखें नहीं खोली। तो इस तरह से उनका जाना हुआ। लेकिन एक और राज आपको सुनाता हूं, दीदी कभी भी बाबा के सामने अव्यक्त बाबा के सामने बैठती थी तो बाबा उनसे एक प्रश्न पूछते थे, जैसे बाप तुमको उंगली पकड़ करके चला रहा है ऐसे तुम कब बाबा को उंगली पकड़ के चलाओगी। समझ गया क्या कहना चाहता बाबा, माना जो श्री कृष्ण का पार्ट चलेगा उसकी माँ उसको बनना है। ये साकार में बाबा बोलते थे और उसके पहले भी ट्रांस के मैसेज के द्वारा भी क्लियर होता था। तो एडवांस पार्टी में तो जाना ही था उनको, माँ बनना है तो जाना पड़ेगा ना एडवांस पार्टी में। लेकिन अभी 32 साल हो गए हैं, 32 ईयर्स की हम ये पुण्यतिथि मना रहे हैं। तो 32 साल में अभी तक तो श्री कृष्ण का आह्वान हम नहीं कर पाए ना, लेकिन कहां पर वो गुप्त आत्मा एडवांस पार्टी में है, बहुत योगी आत्मा थी, उसकी एकाग्रता ऐसी थी कि दृष्टि दे दे कितने लोगों को साक्षात्कार होता था, ट्रांस में चले जाते थे। कभी ज्ञान मुख से नहीं सुनाया, लेकिन जितने विदेशी दीदी की दृष्टि से प्रभावित थे कितने लोगों को दीदी ने दृष्टि से जन्म दिया। ऐसी परख लेती थी। एक यहां पर पहले पहले एक जज थे दिल्ली के, वो एक वकील को सुप्रीम कोर्ट के वकील को लेकर के आए यहां एक हफ्ता रहा, नया नया था जज ज्ञान में था, लेकिन उसका वो फ्रेंड था इसलिए उसको ले आया। दीदी ने आते ही उसको परख लिया कि ये बच्चा फिर बाबा का बन सकता है। 5-6 दिन उसकी खूब पालना की, खूब अच्छी तरह से खिलाना पिलाना घुमाना ज्ञान योग सब प्रकार से। जब जाने लगा तो उससे एक प्रश्न किया, तुमने इतनी पालना ली है, अच्छा लगा? बोला बहुत अच्छा लगा दीदी, बहुत अच्छा लगा। बोला अच्छा, तुम इसके रिटर्न में क्या दोगे? अब उसने जब ये बोला रिटर्न में क्या दोगे, तो समझा कोई चीज मांगेंगे दीदी। तो बोला दीदी आप जो कहेंगी वो देंगे, आप बोलो। तो दीदी कहती दो चीजें मुझे चाहिए। बोला हाँ हाँ दीदी, मैं जरूर दूं। बोला वायदा करो दूंगा। बोला हाँ दीदी। अभी वायदा करा लिया दीदी ने पहले, फिर बोला एक आना और पांच खोटे पैसे। अब मूंझ गया वो वकील इतना बड़ा, कहता दीदी आना तो भी चलता नहीं है, वो तो बंद हो गया, और खोटा पैसा क्या करेगी, वो तो एक तरफ खोटा होता तो चलता ही नहीं है। वो बेचारा मूंझ गया, ये कौन सा, इन्होंने दो चीजें मांग ली मेरे से, कुछ करोड़ लाख मांगते तो भी ठीक था, एक आना और पांच खोटे पैसे। दीदी कहती सुनो, एक आना माना एक बार सेंटर पर रोज आना, एक बार सेंटर पर रोज आना, और दूसरा पांच खोटे पैसे तो तुम्हारे पास है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन खोटे पैसों को छोड़ दो, ये दे जाओ दीदी को, बस और कुछ नहीं चाहिए। अब बेचारे ने वायदा तो किया था दे दूंगा मैं, अब क्या करे? बोला दीदी जरूर, अभी मैं आज से संकल्प करता हूं मैं छोड़ूंगा। वो यहां से गया, वंडरफुल उसने पार्ट बजाया, एक दिन भी उसने मुरली मिस नहीं की। एक आना माना एक आना, एक बार जाना सेंटर पर, शुरू कर दिया जाना। अब सेंटर पर शुरू जाना जाए, रोज जाएगा, रोज मुरली सुनेगा, तो पांच कोटे पैसे छूट ही जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का वकील था, थोड़े समय के बाद रिटायर हुआ और सरेंडर हो गया, मधुबन में आ गया। और मधुबन में कई चीजें, कई कार्य किए, बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। लालचंद की बात करो, व्हाट्सएप, एक दिन की मुरली उसके पास, आप डेट वाइज उसे नोट करके देख सकते हो। तो दीदी की जो परखने की शक्ति थी ना, बहुत पावरफुल थी, एकदम परख ले उसको झाटकू बना के छोड़ देते। सब कुछ सफल किया, सब कुछ सफल कराया, उसकी दृष्टि से बहुत सेवाएं हुई, बहुत अच्छी एकाग्रता का अभ्यास था, और अंत में यही संकल्प लेके अब घर जाना है। उपराम हो गई, न्यारी हो गई, सब कुछ करते हुए ऐसे लगता था यहां है ही नहीं, और 28 तारीख को अव्यक्त हुई। फिर बाबा के बच्चों के बहुत संकल्प चले कि डॉक्टर ने हमको धोखा दिया, क्योंकि डॉक्टर ने तो बोला था बहुत छोटा सा ऑपरेशन है। तो बहुत संकल्प चलाने लगे ब्राह्मण, तो फटाफट बुद्धि चलाते ना कि अगर अमेरिका में ऑपरेशन कराते, यहां कराते, क्या जरूरी थी। तो फिर बाबा शाम को आए 30 तारीख को, और बाबा ने बड़े प्यार से कहा बच्चे न भगवान का दोष है न भगवती का दोष है, डॉक्टर का नाम भगवती था, न भगवान का दोष है न भगवती का दोष है, तो ड्रामा का। बाबा आपको भी प्रीत थी, बाबा को प्रीत थी, इसलिए बाबा ने उसको अपने पास बुला लिया, आप संकल्प क्यों चलाते हो। बाबा ने इतना हल्का किया, इतना हल्का किया, और उसी समय दादी जानकी को सहमुखी प्रशासिका के रूप में दादी के साथ रखा। लेकिन कहा नहीं, ये अमेरिका विदेश नहीं छोड़ेगी, इनको सहयोग के लिए अभी चंद्रमणि दादी को रखते। दादी जानकी दादी को सह मुख्य प्रशासिका रखा, और ज्वाइंट के रूप में चंद्रमय दादी को रखा। तो चंद्रमय दादी फिर मधुबन में आ गई पंजाब से, और दादी को जैसे अधिकार रहेगी ऐसे, लेकिन संयुक्त प्रशासिका के रूप में। तो चंद्रमय दादी फिर दादी के साथ यहां रही दीदी के बाद, और बहुत अच्छी तरह से संभाला। लेकिन कभी कोई नहीं सोचा था कि चंद्रमय दादी इतनी जल्दी झाटकू चली जाएगी। यहां से बेंगलोर गई छुट्टी लेकर के, और बेंगलोर में बोली गैस हो रही है, कुछ ऐसा तकलीफ हुई, जा रही थी बड़े सेंटर पर, एक बीच में सेंटर था वहां रुक गई। सद्भावना भवन में अभी हो के आया, मैं देखा एक छोटा कमरा था, वहां गई, जब तक डॉक्टर आया तब तक अव्यक्त हो गए, शरीर छोड़ दिया। फिर वहां से यहां लेके आए थे बॉडी को। लेकिन चंद्रमयी दादी ने भी ज्ञान सरोवर जब बना तो बहुत प्यार से ज्ञान सरोवर को संभाला, दादी की राइट हैंड बन करके रही, दीदी के बाद पूरी पालना दी। अब जब चंद्रमय दादी गई तो फिर मनोहर दादी को सीटों मिली, और फिर जब दादी खुद चली गई तो फिर दादी जानकी को आना पड़ा। तो इसलिए सब दादियां हमारी पूर्वज हैं, इनकी कितनी कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, हमने तो दीदी दादी के साथ बहुत अच्छे तरह से पाठ बजाने का, इसके कारण, मुरली के कारण, पत्र व्यवहार के कारण, लिखा पढ़ी के कारण बहुत समीप रहने का भाग्य मिला है और सदा यही रहा। कोई भी इससे छुट्टी तुमको लेने की जरूरत नहीं, कभी भी काम पड़े दादी के पास डायरेक्ट कमरे में आ सकते हो, दीदी के पास डायरेक्ट जा सकते हो। अभी भी दादी जानकी के लिए कोई मेरे को रुकावट नहीं, कैसी भी हालत में मैं दादी के पास जाके कोई भी बात पूछनी हो, बात करनी हो, जाता हूँ, पूछ के आ जाता हूँ। तो दादियों की बहुत नजदीक से पालना ली है। हर एक आत्मा की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, बाबा ने इनके ऊपर कलश रखा, जरूर बहुत सारी विशेषताओं से संपन्न, बाबा की सब आशाएं उन्होंने पूरी की हैं। और अब हम सबको भी मिलकर के क्या करना है, ध्यान रखना एक बात का कि इन लोगों ने हम सबको दो तीन बातें बहुत पक्की कराई हैं। एक तो पक्की कराई, किसी के संग दोष में नहीं आना, संग तारे को संग डुबोए। दादियां हमको हमेशा, दीदी हमेशा ट्रेनिंग देती थी, यहां भी देखना ऐसा संग नहीं करना जिसका पढ़ाई पर ध्यान न हो, जो यज्ञ के प्रति, बड़ों के प्रति, मुरली के प्रति कुछ न कुछ अपनी बुद्धि चलाता हो, उल्टा बोलता हो, उसका संग नहीं करना। तो संग का ध्यान रखना, बाबा की मुरली और अमृत वेला कभी मिस नहीं करना, कुछ भी हो जाए, यही आपकी पढ़ाई है और इसी से आपकी प्रगति है। और एक बात लास्ट सुना के पूरा करता हूं, टाइम पूरा हो गया। मर्यादाएं जो हैं उनमें एकदम पक्की दृढ़ता से पालन करना। अगर कोई भी भाई किसी बहन से अकेले में 5-10 मिनट खड़े होकर बात कर रहा हो और दीदी के पास रिपोर्ट पहुंच जाए तो बस, बहुत स्ट्रिक्ट थी इस बात में। कभी कभी पूछ देती थी, तुमको शादी करनी है ना, बात क्यों करते हो, किसी से फैमिलियरिटी है क्यों, उसके बात करते हो, अच्छी लगती है, शादी करनी है तुमको, सीधा ही इस बात में स्ट्रिक्ट। कभी भी कोई से व्यक्तिगत लेन देन नहीं, व्यक्तिगत हिसाब किताब नहीं, किसी से प्रभावित नहीं होना, तुम्हारी पहली मर्यादा पवित्रता की है। ये कंगन बांध के रखोगे तो ब्राह्मण जीवन का भाग्य है। इसलिए दीदी और दादी ने इन बातों को बहुत दृढ़ता से पालन कराया और कभी भी किसी में न फंसना, न अपने में किसी को फंसाना। और जो यज्ञ से मिलता है वही पहनना, वही खाना, वही लेना, जो देता है उसको यज्ञ में समर्पित कर देना। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, इन लोगों ने हम लोगों को, दादियों ने बहुत प्यार से एक एक बात सिखाई है। और जो पुराने हैं जिन्होंने दीदी दादी की पालना ली है, आज वही यज्ञ के अंदर पिल्लर के रूप में गुप्त रीति से यज्ञ को संभाल रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। ओम शांति।
ओम शांति। अनमोल रतन, अनुभूति के रतन आदरणीय भ्राता जी से, दीदी के, दादी के, और जिन्होंने इन्हें चुना, संजोया और हमारे तक पहुंचाया, स्वयं के, किन शब्दों में हम उनका शुक्रिया करेंगे कि सन 1972 से लेकर और आज 2015 तक की यात्रा इतने कम समय में और इतना मूल्यवान अनुभव हम सबके सामने रखा। निश्चित ही सार के रूप में जो दीदी की और दादी जी की मुख्य शिक्षाएं थी, उनको हम अपना निजी स्वभाव बनाते हुए भ्राता जी का शुक्रिया करेंगे कि हम भी कभी भी संग दोष में, कमजोर पुरुषार्थी के साथ में नहीं आएंगे, कभी भी प्यारे बाबा का दी हुई शिक्षाएं, आज्ञाएं, मार्ग प्रदर्शना से जो भरपूर है हमारी मुरली, उसको जीवन में मिस नहीं करेंगे। और अमृत वेला पावरफुल, अनुभव युक्त और सदैव अपनी आत्मा के सर्व संबंध बाबा के साथ जोड़कर मनाते रहेंगे। ऐसे तीन संकल्पों की धारणा करते हुए हम आदरणीय भ्राता जी का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। आपने जो ये खान दी है, खजाना दिया है, हम इसे संभालेंगे, धारण करेंगे और स्वयं का भी कल्याण करेंगे और हमारे पीछे जो आने वाले बहुत भाई बहन हैं आपके और उनके बीच में जो हम कड़ी हैं उसकी हम सेवा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। कल 28 जुलाई दीदी का पुण्य स्मरण दिवस है, उस पे आपने हमें इतनी श्रेष्ठ पुण्य स्मृतियां दी। हमारे बहुत अधिकांश भाई बहनों ने दीदी को नहीं देखा था साकार में। भाई साहब के अनुभव सुनते हुए लग रहा था जिन्होंने देखा है उनको तो विजय से दीदी कि वो सब चरित्र आंखों के सामने घूम रहे थे, लेकिन दिव्य नेत्र से आप भी ऐसा ही अनुभव कर रहे थे क्योंकि भाई साहब का चेहरा नैन चैन स्वरूप बिल्कुल उसमें डूब कर हम सबके सामने श्रवण करा रहे थे। पुनः हम तहे दिल से दीदी को भी अपनी ऐसी धारणा की श्रद्धांजलि का संकल्प लेके सोएंगे और कल पुनः अमृत वेले से इन्हें और पक्का करेंगे। ओम शांति।